नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण में नागरिकों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को हो रहे नुकसान की जिलेवार सर्वे रिपोर्ट शीघ्र देने के निर्देश दिए। रामनगर के कोसी बैराज और कार्बेट लैंडस्केप प्रवासी पक्षियों से गुलजार और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में हल्की बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी कर दी है। यह चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से निर्धारित 30 दिन की अवधि में अभियान चलाया जाएगा। यह चरण 30 सितम्बर तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट।
दौरान जनगणना अधिकारी घर के स्वामित्व की स्थिति, घर के उपयोग, कमरों की संख्या तथा परिवार के मुखिया के लिंग के बारे में जानकारी मांगेंगे। नागरिकों से उनके घरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। इनमें लोगों से पीने के पानी का मुख्य स्रोत, रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, LPG और PNG कनेक्शन तथा खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाएगी। नागरिकों के पास 30 दिन के गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिन की अवधि में स्वगणना करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अप्रैल से सितंबर तक घरों का सूचीकरण और आवास जनगणना तथा फरवरी 2027 में व्यक्तियों की गणना होगी।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को हो रहे नुकसान के सही आंकड़े न देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए जिलेवार सर्वे कर नुकसान के आकलन की रिपोर्ट शीघ्र देने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने देहरादून में कृषि व उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बारिश न होने से फसलों को हो रहे नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर सर्वेक्षण और रिपोर्टिंग में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून जिला प्रशासन केदारपुनम क्षेत्र में स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह एवं शिशु सदन का कायाकल्प करने में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी समीन बंसल के सतत प्रयासों से बुजुर्ग महिलाओं के लिए 30 बेड का अतिरिक्त भवन लगभग तैयार हो चुका है। वर्तमान में नारी निकेतन में 178 बेसहारा और शोषित महिलाएं निवासरत हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट ने बताया कि बालिका निकेतन में बच्चों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। वहीं नारी निकेतन की महिलाओं को क्राफ्ट डिजाइन, ऊनी वस्त्रों की कढ़ाई बुनाई और सिलाई जैसे आजीविका परक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।
अनाथ है, परित्यक्त है और इस तरह के बेसहारा जो महिलाएं हैं या उस तरह से बच्चे जो हमें मिलते हैं, तो फिर माननीय मजिस्ट्रेट्स के आदेश से उनको यहाँ पर रखा जाता है और हमारी सरकार के द्वारा इसमें पूरा उनके रहने की, भोजन की, पोषण की, स्वास्थ्य की और उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था देखी जाती है।
पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार के सनेह क्षेत्र में आगामी 31 जनवरी से 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला कार्यालय में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बर्ड फेस्टिवल के दौरान कार्यक्रम स्थल पर बर्ड वॉचिंग से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बर्ड वॉचिंग के लिए 12 नेचर ट्रेल्स विकसित की जाएंगी, जिनके माध्यम से प्रतिभागी प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न पक्षी प्रजातियों को नजदीक से देख सकेंगे। इसके साथ ही स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए बर्ड क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि उनमें पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ सके। जिलाधिकारी ने बर्ड फेस्टिवल में स्कूली बच्चों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
नैनीताल जिले में रामनगर के कोसी बैराज और कार्बेड लैंडस्केप से गुजरने वाली कोसी नदी में इस साल प्रवासी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एशियाई जल पक्षी गणना 2026 के नतीजों में सुरखाब यानी रूडी शेल्डक की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 18 जनवरी से शुरू हुए इस वैश्विक अभियान के तहत रामनगर के कोसी बैराज में गणना की गई। यह अभियान 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी गणना का हिस्सा था। इस कार्य में पक्षी प्रेमियों, छात्रों, स्वयंसेवकों और वन विभाग के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गणना में सक्रिय विशेषज्ञ दीप मलकानी ने बताया कि कोसी नदी और इसके आसपास का क्षेत्र प्रवासी जल पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण विंटरिंग स्थल बना हुआ है।
कोसी बैराज के आसपास हमारा एशियन बर्ड सेंसस का एक काउंटिंग सिस्टम था जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर काउंट किया है। पिछले साल के अपेक्षा रूडी सेल्डक जो था उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, जो कि खर्च का विषय है हम लोगों के लिए और हमारे रामनगर शहरवासियों के लिए। इनका अधिक होना हमारे लिए फायदेमंद रहता है कि इसके आसपास का जिस वातावरण में रह रहे हैं वो एक साफ और सुरक्षित वातावरण में है, तो उससे एक फायदा हम लोकल्स के लिए भी यहाँ पर है। देखिए लास्ट ईयर के हिसाब से जो रूडी सेल्डक की बात करते हैं तो 422 के आसपास हमने नोट किया था और लगभग इस बार जो है इसमें बढ़ोतरी 486 के आसपास
वहीं हल्द्वानी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने इसे बहुत अच्छा संकेत बताया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कोसी नदी का पर्यावरण अभी भी इन खूबसूरत प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल बना हुआ है।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हमने नंधौर वन्यजीव अभयारण्य और हल्द्वानी वन प्रभाग के क्षेत्रों में एक पक्षी गणना करवाई थी। इसमें 215 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं, जिसमें कई ऐसी हैं जो संकट प्राय प्रजातियां भी हैं, और इसमें एक विशेष रूप से जो है ब्लैक बाजा जो प्रजाति पाई गई है, जो मेनली जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसी में देखने को मिलती है, तो वो उत्तराखंड में संभवतः पहली बार नंधौर वन्यजीव अभयारण्य में देखी गई है, जो एक हमारे लिए जो हमारे कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं ये सही दिशा में हैं।
प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट आई है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम और हर्षिल घाटी सहित आसपास के इलाकों में बर्फबारी होने से ठिठुरन बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम, त्रियुगी नारायण और अन्य निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। वहीं राजधानी देहरादून में हल्की बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। अल्मोड़ा और बागेश्वर स्थित राज्य के अन्य जिलों में बादल छाए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों के अधिकांश स्थानों में 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में देहरादून सहित प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बस रैपिड ट्रांजिट EBRT और रोपवे परियोजनाओं की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सचिवालय में आवास सचिव डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की समीक्षा बैठक में शहरी परिवहन से जुड़ी विभिन्न परियोजना पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि देहरादून शहर में दो प्रमुख कॉरिडोरों पर EBRT परियोजना लागू करने के लिए उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड UKMRC से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इसके लिए आवश्यक अध्ययन कराने के निर्देश दिए गए हैं और अध्ययन पूरा होने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण में नागरिकों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को हो रहे नुकसान की जिलेवार सर्वे रिपोर्ट शीघ्र देने के निर्देश दिए। रामनगर के कोसी बैराज और कार्बेड लैंडस्केप प्रवासी पक्षियों से गुलजार और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में हल्की बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।